नमस्कार। आज जो हम भगवद गीता का श्लोक देख रहे हैं वो 10वें अध्याय का 34वां श्लोक है। ये उस वक्त कहा जा रहा होता है जिस वक्त भगवद गीता में विश्वरूप दर्शन नाम का हिस्सा चल रहा होता है। ये विश्वरूप दर्शन नाम का हिस्सा वो होता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपना विश्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं और बाद में भयभीत होता हुआ अर्जुन उसे समेट लेने की बात करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने कई रूपों की और अपने गुणों की चर्चा कर रहे होते हैं। ये 10वें अध्याय का 34वां श्लोक है। इसमें कहा गया है, मृत्यु सर्वहरश्याहम उद्भवश्य भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेघाद्रति क्षमा। विभूति योग नाम के इस अध्याय के 19वें श्लोक से अध्याय के अंत तक भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते रहते हैं। इस श्लोक के उत्तरार्ध में वो कह रहे हैं कि स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक यानी वाणी, स्मृति मेघा धृति और क्षमा जैसे गुण वो स्वयं हैं। आम जीवन में आपकी जिन बातों को पांच लोग भी सुनने को तैयार नहीं होते, वही बात अगर कोई स्त्री कह रही हो तो 50 लोग सुनने को तैयार होंगे। यहाँ पर आप कीर्ति देख चुके हैं। आपकी बचत और उतने ही कमाई खर्च में जीवन यापन करती किसी स्त्री से अपनी तुलना कीजिए। अपनी पत्नी को ही देख लीजिए, श्री दिख जाएगी। अगर व्यक्तिगत अनुभव से बताएं तो जिस जमाने में मेरी तनख्वाह करीबन 10,000 रुपये महीना हुआ करती थी, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। आज भी बचत कोई खास नहीं है, लेकिन चलिए वो दूसरी बात है। 10,000 रुपये की तनख्वाह के साथ अगर तुलना करें तो भी आप देखेंगे कि इसी कमाई और इसी खर्च में एक स्त्री काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लेती है। ये श्री है। बोलने यानी वाक शक्ति के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो स्त्रियों के लिए इस मामले में कुछ भी कहना हम ज़रूरी नहीं समझते। अब चलिए देखते हैं कि बोर्ड के रिजल्ट्स तो आपने देखे होंगे। हर साल जब बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं तो टॉपर्स की गिनती कई अखबार बता रहे होते हैं। इसमें लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं ये भी बताया जाता है। यहाँ आपने देखा होगा कि लड़कियाँ कितनी हैं और लड़के कितने। यहाँ आपको मेघा नाम की शक्ति दिख जाएगी। 5 साल पहले फलाने की शादी में किसने क्या पहना था, या आपने कौन सी बेवकूफ़ी भरी बात की थी या कौन सी हरकत की थी, ये जब आपकी पत्नी आपको या आपकी माताजी आपको याद दिलाती हैं तो आपने स्मृति नाम की शक्ति या स्मृति नाम की विभूति को देख रखा है। घंटे भर लड़ने के बाद आपकी बहन या आपकी पत्नी या आपके परिचितों में से कोई और महिला जब आपसे चाय पियोगे या नहीं पूछने आ जाती है तो आप क्षमा नाम की शक्ति भी देख चुके हैं। इतनी तेजी से इतनी आसानी से अभी अभी की लड़ाई को भूलना किसी भी पुरुष के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। ये जो धृति है ये धारण करने का गुण है। धरती या धारित्री जैसे शब्द इसी शब्द से बनते हैं। पूरे परिवार को संभाले रखना या कई लोगों का खाना कौन व्यक्ति क्या पसंद करेगा ये तय करना, कई लोगों के खाने से लेकर टीवी सीरियल तक में नापसंद पसंद हर एक चीज़ का ध्यान रखना और सब कुछ संभाले रखना, यही धारण करने की धृति नाम की शक्ति। भगवद गीता में अगर आप अध्याय की समाप्ति की घोषणा देखेंगे तो आपको एक और ख़ास चीज़ नज़र आएगी। यहाँ बड़ी आसानी से भगवद गीता को स्त्रीलिंग के बजाय पुलिंग घोषित किया जा सकता था, श्रीमद् भगवद गीतम भी हो सकता था। हर अध्याय के अंत के समापन वाक्य में श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु लिखा हुआ जो होता है वैसा क्यों लिखा जाता है? इससे ये दर्शाया जाता है कि हर एक अध्याय एक उपनिषद है और सभी अध्याय मिलकर एक वृहद उपनिषद बनाते हैं जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा गया। उपनिषदों को वेद के लिए वैसा ही माना जाता है जैसे शिव के लिए शक्ति और पुरुष के लिए प्रकृति होती है। वेद शब्द पुलिंग है और उपनिषद स्त्रीलिंग होता है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पूरी की पूरी स्त्रीलिंग ही है। अब संस्कृत ग्रंथों की प्रणाली देखें तो उनके आरंभ में अनुबंध चतुष्टय बताया जाता है। अनुबंध चतुष्टय में जाहिर सी बात है कि चार चीज़ें होंगी। ये चार चीज़ें होती हैं विषय, अधिकारी, प्रयोजन और परस्पर संबंध। ये चारों अनुबंध चतुष्टय कहे जाते हैं। मूल भगवद गीता में भी इन चारों का संकेत है, लेकिन अगर भगवद गीता के शुरुआत के मंगल पाठ को देखें जहाँ की पुष्पिका रूप में मंगल पाठ आता है, तो वहाँ पर इसे स्पष्ट कहा गया है। सबसे पहली चीज़ यानी विषय, ये उपनिषदों में बताए गए जीव और ब्रह्मा का अद्वैत इस विषय की चर्चा कर रहा होता है। इसका प्रयोजन क्या है, यानी जो तीसरा हिस्सा होता है अनुबंध चतुष्टय का, वो प्रयोजन देखें तो आवागमन संसार चक्र से निवृत्त हो जाना इसका प्रमुख प्रयोजन है। अगर आप विषय की बात करें और ग्रंथ के साथ उसके परस्पर प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव की बात करें, तो अधिकारी और ग्रंथ का बोध्य और बोधक का भाव, ये संबंध है। भगवद गीता के जरिए हमें बोध होता है कि सत्य या किए जाने योग्य कर्म क्या है। अब अंतिम हिस्से पर आते हैं तो यहाँ अधिकारी की बात होती है। मुक्ति चाहने वाले सभी मनुष्य इसके अधिकारी हैं। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि स्त्रियों को इसका अधिकार होगा या नहीं, या स्त्रियों के लिए इसमें क्या लिखा गया होगा, तो हमारी ये छोटी सी चर्चा इस संबंध में थी कि भगवद गीता में स्त्रियों के विषय में कुछ लिखा गया है भी या नहीं, और उन्हें पढ़ना इसे चाहिए, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। जो श्लोक हमने बताया वो 10वें अध्याय का 34वां श्लोक है, और हमने जो अर्थ बताया है वो सिर्फ इसका उत्तरार्ध है, यानी आधा हिस्सा। इसके शुरुआती आधे हिस्से का अर्थ यानी पूर्वार्ध का अर्थ हमने नहीं बताया है। उम्मीद करते हैं आप इसे स्वयं देखेंगे और इसका अर्थ, पूरे श्लोक का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।